प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
नमस्कार दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं यानी आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान हैं वो एक बहुत ही उम्दा शायर और गीतकार हैं, अजीम शिराजी, जो अब तक कई फिल्मों के लिए गीत लिख चुके हैं। आपको इनके गीतों में एक अलग ही शायराना अंदाज दिखेगा। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं अजीम शिराजी का। अजीम भाई, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हाय संजीव जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि इसमें आपने जो मुझे इनवाइट किया।
अजीम भाई, सबसे पहले तो 1920 लंदन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। फिल्म शायद उतनी नहीं चल पाई लेकिन फिल्म के गाने जरूर कामयाब हुए हैं। तो हम जो शुरुआत है वो शुरुआत से ही करते हैं कि आपने लिखना कब शुरू किया और गीतकारी को अपना प्रोफेशन बनाने के बारे में आपने कब सोचा?
1920 लंदन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने गाने पसंद किए उसके। और जहाँ तक मेरे लिखने की बात है तो मैं बहुत ही कम उम्र से लिख रहा था, पढ़ाई के ज़माने से लिखना शुरू कर दिया था। और कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगा, लेकिन अचानक दिमाग इस तरफ आया, फैसला लेने में जो है वक्त नहीं लगा और फिर मैं जो है इंडस्ट्री में दाखिल हुआ, स्ट्रगल किया और लिखना शुरू कर दिया। हालांकि पहले मैंने काफ़ी कुछ जो है लिखा है गज़लों में, नज़मों में, कभी कभी जो है मैगज़ीनों में मेरी चीज़ें छपा करती थीं, लेकिन जब से फिल्मी गाने लिखना शुरू किया मैंने तब से जो है उस तरफ ध्यान मेरा अब नहीं रहा। काफ़ी वक्त से मैं लिख रहा हूँ, मुझे याद है कि जहाँ तक मेरी उम्र शायद 11-12 साल रही होगी तब से मैं लिखना शुरू किया था और मैं लिख रहा था।
जी अजीम भाई, तो क्या आप मूल रूप से मुंबई के हैं?
जी नहीं संजीव जी, मैं यूपी में एक ज़िला है जिसका नाम है जौनपुर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और काफ़ी अरसे से मुंबई में रहता हूँ। और हालांकि मुख्तलिफ जगहों पर मेरा रहना हुआ है पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन बॉम्बे में जब से आया हूँ तब से स्ट्रगल की वजह से रहा।
जी, तो जब आप मुंबई आए तो क्या मुंबई में इंडस्ट्री के कुछ लोगों से आपका परिचय था? कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे फिल्मों के लिए लिखना है?
नहीं संजीव जी, मैं जब बॉम्बे आया मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं था, मैं फिल्मी लोगों में किसी को भी नहीं जानता था, बस यूं ही अपने तौर पर बॉम्बे में जो है इधर उधर जाना आना शुरू किया, लेकिन फिल्मी लोगों से मुलाकातें नहीं होती थी। काफी सालों तक मैं जो है यूं ही जो है इधर उधर भटकता रहा, लेकिन सही जगह मुझे कभी नहीं मिली कि मैं वहां लोगों तक पहुंच सकूं जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे उस जमाने में, उनका भी इंतकाल हो चुका है, उन्होंने मुझे कुछ हद तक काफ़ी मुझे रहनुमाई की मेरी और फिल्मी हलके में ला करके एक बार दिखाया कि यहाँ लोग हैं, यहाँ इस तरह से स्ट्रगल किया जाता है। तो फिर मैंने जो है उस अंदाज से लोगों से मिलना शुरू किया, लेकिन काफ़ी वक्त निकल गया, लोग जो है सुनते थे चीज़ें और हाँ भी कहते थे लेकिन करते भी नहीं थे, शायद वक्त नहीं आया था या लोगों को इतना भरोसा नहीं होता था मुझ पर। लेकिन कुछ दोस्त इस तरह से बनते चले गए जिनको मुझ पर भरोसा हुआ, मुझे उन पर भरोसा हुआ और इस तरह से करते करते जो है मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली फिल्म वॉर छोड़ना यार, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे फराज हैदर साहब जो डायरेक्टर हैं उसके, उन्होंने मुझसे लिखवाया उस फिल्म के गाने, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ।
जी, तो वार छोड़ो ना यार जो है वो आपकी पहली फिल्म थी, ये आपको फिल्म मिली कैसे, थोड़ी सी ये कहानी हमें बताइए।
संजीव जी, ये भी एक कहानी है, काफी वक्त तक भटकने के बाद इंसान थोड़ा बहुत जो है मायूस होने लगता है और मैं भी होने लगा था, लेकिन उस वक्त जो है कुछ अच्छे लोगों से मुलाकातें मेरी रही जिसमें रूमी जाफरी साहब हैं और लोग भी रहे हैं, तो उनके ज़रिए कुछ और लोग मिले जिनमें से एक हमारे दीपक भाई हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके दोस्त थे फराज हैदर, उन्होंने मुझे वहाँ मिलवाया। उस वक्त फराज हैदर साहब भी जो है स्ट्रगल ही किया करते थे, उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन हम एक साथ जो है मिलने लगे, बैठने उठने लगे, प्लान होता था कि कुछ करेंगे तो यार साथ में करेंगे। इस तरह से करते करते वॉर छोड़ना यार उनकी एक फिल्म रेडी हुई, उसमें हमारे एक दोस्त थे म्यूजिक डायरेक्टर असलम केई, उनको भी मैंने वहाँ मिलवाया, बहुत अच्छी म्यूजिक ये देते हैं, और फिर हमने साथ में जो है गाने बनाए। और वो फिल्म शुरू होने से 1.5 साल या 2 साल पहले हमने उसके गाने जो है एक डेमो की शक्ल में रिकॉर्ड कर लिए थे, गाने ओके कर दिए गए थे, लेकिन फिल्म शुरू नहीं हो रही थी, शायद उसके प्रोड्यूसर्स वगैरह के मसले थे। अचानक गाने होने के 1.5 साल के बाद वो फिल्म चालू हो रही है ऐसी खबर मुझे मिली, उसके बाद प्रॉपर उस गाने रिकॉर्ड होना शुरू हुए, खुशी हुई कि पहली फिल्म है। और फराज हैदर ने मुझ पर भरोसा किया कि अजीम भाई आप अपने तरीके से लिखिए, आपको जैसा लगे, मैं कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा, और हमने किया उसे अच्छे से और फिल्म आई, लोगों ने देखी, बहुत अच्छी थी
जी। ये एक बड़ी फिल्म थी और इसमें इसकी स्टार कास्ट भी काफी बड़ी थी। जहां तक एल्बम की बात की जाए तो इसके जो सिंगर्स थे वो भी सब नामी गिरामी थे, और यकीनन जब आपने इसके गाने लिखे तो जरूर ये फिल्म और ये बहुत स्पेशल रहे होंगे। तो वो पहला गीत कौन सा था जो आपका रिकॉर्ड हुआ?
संजीव जी, वाकई में काफी बड़ी फिल्म थी ये। शर्मन जोशी जी, जावेद जाफरी जी, सोहाली खान जी, बहुत सारे लोग इसमें थे और काफी बड़े लेवल की फिल्म थी, बिग बजट थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मतलब बहुत अच्छी फिल्म मिली है, इसमें कुछ करने का मौका मिलेगा। उसी तरह से उसके गाने भी लिखे गए, मगर क्या है कि सिचुएशन जैसी हुआ करती थी गाने वैसे लिखे गए। पहला हमने उसमें जो गाना किया था वो रोमांटिक गाना था, मैं जागूं अक्सर। उसके बाद बाकी गाने हुए और उसमें जितने भी सिंगर थे सभी बड़े नामी गिरामी सिंगर थे उसमें। जहाँ तक फिल्म के एल्बम की बात है, उसके गाने लोगों ने पसंद ज़रूर किए। अब उस एक हिट लेवल पे नहीं आ सके, उसकी क्या वजह थी वो तो नहीं बता सकता मैं, मुझे पता नहीं है। और उसके बाद से मुझे और कुछ फिल्में फिर मिली उन्हीं गानों को सुनने के बाद, लोगों ने बुलाया मुझे।
जी अजीम भाई, तो जावेद अली का गाया हुआ मैं जागूं अक्सर गीत हम अपने श्रोताओं को थोड़ा सा सुनवाते चलते हैं, ताकि उनको पता लगे कि आपकी जो पहली फिल्म थी उसमें आपने कैसे गीत लिखे थे। लेकिन इस गीत के रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई अगर कोई मजेदार बात आपके जहन में याद आती है तो वो जरा हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उसके बाद फिर हम ये गाना सुने।
संजीव भाई, बात असल में ये है कि ये इस गाने को जब मैंने लिखा था तो पूरा मुखड़ा मैं जागूं अक्सर तक ही था। बाद में फराज भाई ने मुझसे कहा कि नहीं यार, इसमें और थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, कुछ इसी काफिये पर कुछ और लाइन होनी चाहिए। तो हम लोग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के वक्त जो है ये लाइन मैंने बोली थी, अरे चढ़ गया कसकर तेरा जादू मुझ, तो फिर एक गाना ये अलग सा हो गया था। वो बहुत अचानक और बहुत जल्दी में लिखी गई लाइन थी और उसे ही हुक लाइन बना करके गाना रिकॉर्ड किया गया था।
जी अजीम भाई, तो चलिए ये गीत थोड़ा सा सुनते चलें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अजीम भाई, इसके बाद आपको एक बड़ी फिल्म मिली जिसका नाम था जैकपॉट, और उसमें जो गाना था वो बहुत ज्यादा मकबूल हुआ और आज तक लोग उस गाने को सुनते हैं, वो है कभी जो बादल बरसे। लेकिन इस गीत से जुड़ा एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये कि इस गीत के लिए दो गीतकारों को क्रेडिट दिया गया है, तो ये कैसे हुआ और इसकी कहानी थोड़ी सी बताइए हमें।
संजीव भाई, असल में जैकपॉट की कहानी ये है कि वॉर छोड़ना यार रिलीज पर थी और शारिक तोशी भाई का फ़ोन एक दिन आया मुझे कि एक गाना है अजीम भाई, आप आइए और लिख दीजिए उसको, कोशिश करिए, ट्राई करिए आप भी। तो मैं गया, ट्यून सुनाई मुझे, तो उस पर डमी वर्ड थे और डमी वर्ड के साथ ही मैं लिखता हूँ, मुझे मीटर समझ में आ जाता है उस। तो मैंने पूछा भी कि किसका लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि एक राइटर हैं मगर उनका लिखा हुआ पसंद डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नहीं आ रहा है, आप ट्राई कीजिए। फिर मैंने उसे लिखना शुरू किया, कभी जो बादल बरसे मुखड़ा लिखा पूरा मैंने, वो गाना मैं लेकर के गया मुखड़ा जब उनके पास, तो शाहिब तोशी भाई ने पसंद किया उसे, और कुछ लाइनें जो पहले राइटर ने लिखी थी नीचे की लाइनें, बाकी जो है मैंने लिख दिया। एक अंतरा ही रखने का प्लान था गाने में, लेकिन अरिजीत जी जब गा रहे थे गाना तो अचानक जो है ख्याल आया शाहिब तोशी भाई को कि एक अंतरा और होना चाहिए इसमें, तो मैंने स्टूडियो के अंदर उसी वक्त फौरन जो है अंतरा लिखा था, पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया। तो शाहिब तोशी भाई बड़े इंसाफ परस्त लोगों में है कि मतलब किसी की एक लाइन दो लाइन भी हो तो उसे जो है क्रेडिट मिलना चाहिए, उनका ऐसा मानना है, और उन लोगों ने इंसाफ ऐसा किया, जबकि ज़्यादा लिखा हुआ मेरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को रखते हुए कि भाई उसने भी लिखा, चलो कुछ लाइनें पसंद आई हैं और इस गाने में शामिल हैं, तो नाम दे दिया गया उसमें।
जी अजीम भाई, इस गीत को भी जरा सा हम सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये गीत आपका सबसे अधिक हिट गीत है मेरे हिसाब से, तो ये तो जरूर सुना जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस गीत में अजीम भाई का साथ दिया है तुराज ने, जो कि एक और गीतकार हैं। सुनिए ये गीत और इस गीत के बाद मैं आपसे वापस मिलता हूँ इसी कार्यक्रम में।
कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तू गम दे खुशियां सह लूं साथिया सब यहाँ मिटा दे सभी आ जा फासले मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले जरा सा मुझ में तू झांक ले मैं हूँ क्या
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया और कार्यक्रम चल रहा है एक मुलाकात जरूरी है। तो अजीम भाई ये तो हुआ किस्सा स्ट्रगल का और आपके सक्सेस का, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे दौरान में आपका परिवार कहाँ स्टैंड कर रहा था, थोड़ा सा हमें उनके बारे में बताइए।
संजीव भाई जहाँ तक परिवार की बात रही तो परिवार ने कभी इस मामले में मेरा साथ नहीं दिया है और मेरे इस चीज के हमेशा मुखालिफ रहे हैं वो लोग, लेकिन अपना जुनून था और अपनी ख्वाहिश थी कि नहीं मुझे ऐसा करना है, ऊपर वाले की मदद के सहारे यहाँ तक आया हूँ मैं। और कुछ दोस्त रहे हैं जो यहाँ मेरे बनते गए और उन लोगों ने काफी साथ दिया मेरा जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
और अजीम भाई अब जब आप इतने हिट गीत लिख चुके हैं, इतनी फिल्मों में काम कर चुके हैं, क्या अभी भी वो आपको सपोर्ट नहीं करते
हैं? बात सिर्फ काम की मैंने की है, वरना परिवार मेरे जो हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे चाहते हैं, लेकिन हमारा घराना जो है बड़ा मजहबी टाइप का है, इसे नापसंद किया कि तुम करियर के तौर पे इसे मत चुनो कुछ और करो, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक ऊपर वाले क्रम से मैंने पढ़ाई लिखाई की है। जो दोस्त पहले कभी जो है यूं ही कहा करते थे तो पहले उनकी नज़रों में जो बात हुआ करती थी वो अब नहीं है, वो अब इज्जत वाली हो गई है। लेकिन घर वालों का जहाँ तक मामला रहा है वो तो हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि भाई ये काम छोड़ दो ये मत करो।
जी अजीम भाई तो अब तक का जो आपका सफर रहा है इससे आप कितने संतुष्ट हैं अपने करियर के बारे में?
मैं अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जितना भी लिखा है जो भी थोड़ी बहुत फिल्में आई हैं उससे मैं मुतमईन हूँ और सफर मेरा जारी है। कभी जो बादल बरसे से हिम्मत मिली कि इतना बड़ा हिट गाना मेरे नाम हुआ, उसके बाद और भी फिल्में उसके जरिए मुझे मिली। शारिक तोशी भाई के साथ कई फिल्में मैं कर रहा हूँ और वो अपकमिंग है, बहुत अच्छे गाने आप लोग को सुनने के मिलेंगे।
जी यकीन है नजीम भाई। अच्छा अब ये जो फिल्म अभी इस साल आपकी आई है 1920 लंदन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस फिल्म में तो लगभग सभी गीत आपके हैं, शायद एक गीत जो प्रशांत इंगोले ने लिखा है।
1920 लंदन भी शारिक तोशी भाई के साथ ही मैंने की है, बाकी एक दो गाने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों के भी हैं और वही गाने चले मार्केट में, बाकी गाने तो दिखाई भी नहीं दिए कहाँ गए, लेकिन जो भी काम किया है वो आप लोगों के सामने है और मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरे गाने पसंद किए।
जी इस फिल्म में आपने बहुत खूबसूरत गाने लिखे हैं माशाल्लाह, लेकिन ये बताइए कि जैसे ये फिल्म नहीं चल पाई तो आपको लगता है कई बार कि अगर फिल्म चल जाती तो शायद इन गानों को और एक्सपोजर मिल पाता? एक गीतकार के लिए ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि उसके अच्छे गीत फिल्म ना चल पाने की वजह से थोड़े से कम सुने रह जाते हैं, ये थोड़ा सा बताइए।
फिल्म तो बहुत अच्छी बनाई थी और हम सब ने देखा है उसे, कभी कभी होता है ऐसा कि कुछ अच्छी चीजें हैं कभी कभी नहीं भी चलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बुरी थी। और जहां तक काम की बात है तो हमने अपने तौर पे मुकम्मल कोशिश की। हाँ ये बात और है कि फिल्म चलती तो गाने और चलने के चांसेस बढ़ जाते, लेकिन बहुत सारी चीजें किस्मत पर भी होती हैं।
अच्छा जी भाई जो बॉलीवुड के गीतकार हैं उनमें से आपके सबसे पसंदीदा कौन है, जिनका स्टाइल आपको सबसे अधिक प्रभावी लगता है?
संजीव भाई जितने भी गीतकार बॉलीवुड में रहे हैं सब बहुत बड़े लोग थे, बहुत काबिल रहे हैं सब। साहिल लुधियानवी साहब, मजरूह सुल्तानपुरी साहब को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। वैसे जितने थे सब लेजेंड थे, सब बहुत बड़े थे, बख्शी साहब हुए या शकील बदायूनी साहब हुए, देगर तमाम लोग अपनी अपनी जगह बहुत बड़े लोग थे, मगर मजरूह साहब का अंदाज मुझे बहुत पसंद आता है, उनके लिखने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। साहिर लुधियानवी साहब जिन्होंने वाकई गीतकारी में एक अलग मकाम बनाया और एक अलग अंदाज दिया दुनिया को, बताया कि ये भी एक तरीका है, अदब पेश किया उन्होंने जो सुनने में अच्छे भी लगते हैं और हिट भी होते हैं और ज़्यादा दिनों तक याद किए जाते हैं।
अजीम भाई, जब तक आपके जैसे गीतकार इंडस्ट्री में मौजूद हैं तब तक फिल्मी गीतों में अदब की मौजूदगी रहेगी, ऐसा हम यकीनन कह सकते हैं। आज आप हमारे साथ हैं तो हम आपको आपकी कोई गजल या नज्म सुनाए बिना तो इजाजत नहीं देंगे, तो हमारे श्रोताओं के लिए कोई अपनी पसंदीदा गजल या नज्म हमें सुना दीजिए।
संजीव भाई, एक गजल है जो मैं इस वक्त आपको दो चार शेर उसके में सुनाना चाहूँगा। तेरी खुशबू मेरी सांसों में बसी हो जैसे, रात भर तू मेरी बाहों में रही हो जैसे, मेरे सीने पे है बिखरी तेरे होठों की महक, बर्फ कश्मीर की वादी में जमी हो जैसे, गुनगुनाते हुए झरनों सा वो लहजा तेरा, लेके अंगड़ाई कोई बात कही हो जैसे, मेरी बाहों से जुदा हो के गए हो जब से, दिल तो क्या रात की आंखों में नमी हो जैसे।
वाह, बहुत बहुत खूब अजीम भाई, बहुत खूब। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपने जज्बात हमारे साथ बांटे, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। आगे भी आपकी जब फिल्में आएंगी, आपके गीत आएंगे तो हम इसी तरह से मिलेंगे, बातें करेंगे और उन गीतों के बारे में भी। तो फिलहाल अपने श्रोताओं से विदा लेता हूं, अगले सप्ताह मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी कि आपने मुझे यहाँ पर मधु किया, इन्वाइट किया, और तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमें सुना, और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप सब की मोहब्बतें बनी रहें और मैं यूं ही लिखता रहूँ और आप यूं ही जो है मोहब्बतों से नवाजते रहें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
रूठा क्यों मुझसे, खफा ना होना इतना तू, सांसें भी तेरे बिना मैं ना लूं, जाने क्यों बेवजह, ओ हो होने दे तू जरा, मैं तो तेरे शब्द।